जब भी हम इतिहास की कहानियों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हीरो की एक बहुत ही सेट इमेज होती है। मतलब एक ऐसा इंसान जो एकदम सीना ताने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हो।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई डर ना हो, कोई झिझक ना हो, एकदम परफेक्ट।
सही कहा। लेकिन पता है, आज के हमारे इस डीप डाइव में जो कहानी हम खंगालने वाले हैं, उसका हीरो इस सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठता।
और शायद इसीलिए ये कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प और असली लगती है।
बिल्कुल। तो आज हम जेनेसिस यानी उत्पत्ति के अध्याय 29 से 31 तक की घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे सोर्सेज में डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज का काफी विस्तृत एनालिसिस है, और इस कहानी की जो सबसे अजीब बात मुझे लगी वो ये है कि इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही भागने से होते हैं।
हाँ, जान बचाकर भागने से।
अध्याय 29 में हमारा जो मुख्य किरदार है याकूब, वो अपने सगे भाई एसाव से अपनी जान बचाकर भाग रहा है, और फिर अध्याय 31 में, मतलब पूरे 20 साल बाद, वो अपने ससुर और मामा लाबान के अत्याचारों से तंग आकर छिपकर भाग रहा है।
और अब इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम हिस्सा है ना, वो इन दोनों भागदौड़ के बिल्कुल बीच में है। मेरा मतलब है अध्याय 30,
जो कि एक टर्निंग पॉइंट है ना।
बिल्कुल, ये वो जगह है जहां एक बहुत ही समस्याग्रस्त, या अगर हम कहें एक पूरी तरह से डिसफंक्शनल परिवार के बीच कुछ ऐसा होता है जो आगे चलकर पूरी इतिहास को पलट कर रख देता है।
तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एक ऐसा परिवार जो धोखे, भयंकर ईर्ष्या और 20 साल के कड़े संघर्ष से जूझ रहा था, वो अंततः एक बहुत बड़ी ईश्वरीय महायोजना का हिस्सा बन गया।
तो चलिए इस ऐतिहासिक और पारिवारिक ड्रामा की तह में जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले याकूब की उस समय की दिमागी हालत को समझना होगा।
जब वो हारान शहर में एंट्री ले रहा होता है, तब की बात करें आप?
हाँ, देखिए, वो करीब 400 मील की एक बहुत ही खतरनाक और थका देने वाली यात्रा करके पदान आराम के हारान शहर पहुंचा था। लेकिन इस यात्रा के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बेथेल की घटना।
ओहो, वो सपने वाली घटना ना?
बिल्कुल, जहां ईश्वर ने उसे एक सपने में सीढ़ी और स्वर्गदूतों के दर्शन दिए थे, और सबसे बड़ी बात, ये वादा किया था कि वे उसे सुरक्षित इसी भूमि पर वापस लाएंगे।
यहां मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव भी हुआ था, क्योंकि याकूब अब तक ईश्वर को सिर्फ अपने दादा अब्राहम और पिता इसहाक के ईश्वर के रूप में ही जानता था।
सही पॉइंट पकड़ा आपने। उस सपने के बाद ये रिश्ता एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर आ गया था।
अगर मैं इसे आज के जमाने के हिसाब से समझाऊं, तो मान लीजिए किसी को एक बहुत ही शानदार मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े भारी पैकेज का ऑफर मिलता है।
अच्छा, ये उदाहरण दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, तो कंपनी का CEO खुद उससे वादा करता है कि उसका भविष्य एकदम सुरक्षित है और तरक्की पक्की है। वो इंसान खुशी खुशी अपना शहर छोड़कर वहां जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका जो रिपोर्टिंग बॉस है,
वो एक नंबर का अत्याचारी है।
बिल्कुल, एकदम शोषक। तो याकूब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके पास सर्वशक्तिमान ईश्वर का सबसे बड़ा वादा था, लेकिन हारान पहुंचने पर उसका सामना लाबान से होता है,
जो उसे बुरी तरह निचोड़ने वाला था। ये तुलना यहाँ की स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है।
लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर ईश्वर ने खुद सुरक्षा और एक शानदार वापसी का वादा किया था, तो याकूब को तुरंत सफलता क्यों नहीं मिल गई?
ये सवाल अक्सर उठता है।
मतलब उसे 20 साल तक इतनी मुश्किलें, इतना शोषण और ऐसी बदतर स्थिति क्यों झेलनी पड़ी?
देखिए, डॉक्टर मैथ्यूज अपने एनालिसिस में इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर यानी बिगर पिक्चर के रूप में देखें, तो ईश्वरीय योजना कभी भी इंसान की गलतियों से नहीं रुकती।
अच्छा?
हाँ।
याकूब का ये 20 साल का लंबा संघर्ष उस ईश्वरीय वादे का फेल होना नहीं था, बल्कि ये तो उसके चरित्र निर्माण की भट्ठी थी।
मतलब उसे सुधारने का तरीका था।
बिल्कुल। याकूब, जो कि खुद एक धोखेबाज था, उसे एक बेहतर इंसान बनाने और उसके भरोसे को पक्का करने की एक ये प्रोसेस थी।
डॉक्टर मैथ्यू जोर देकर कहते हैं कि अगर ये महायोजना सिर्फ इन लोगों की अपनी अच्छाई या नैतिकता पर टिकी होती,
तो वो कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाती, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें पता ही है।
एकदम सही। ईश्वर उनके पापों को इनाम नहीं दे रहे थे। वो तो दरअसल उनकी कमियों के बावजूद उन्हें एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे थे।
ये बहुत ही गहरा विचार है। अच्छा, अब अगर हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ें, तो जब याकूब हारान पहुंचता है, तो शुरुआत एक कुएं के पास से होती है।
हाँ, और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये कुएं वाली घटना एक पुरानी पारिवारिक कहानी का एकदम उल्टा रूप है।
ये वही कुआं खाना जहां सालों पहले अब्राहम का सेवक याकूब की माँ रिबका को खोजने आया था?
बिल्कुल, तब रिबका ने सेवक और उसके ऊँटों को पानी पिलाया था। उस जमाने में कुआं सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं था,
वो तो एक तरह का सोशल हब होता था, है ना, जहां लोग गपशप करते थे, खबरें मिलती थीं।
हाँ, और इस बार कहानी बहुत ही पलट गई। यहाँ याकूब खुद उस कुएं से एक भारी पत्थर हटाता है और राहेल की भेड़ों को पानी पिलाता है,
और यहीं से एक लव स्टोरी शुरू होती है। याकूब राहेल से इतना प्यार करने लगता है कि वो अपने मामा लाबान को ऑफर देता है कि वो राहेल से शादी करने के लिए पूरे 7 साल तक उसके यहाँ मजदूरी करेगा।
और सोर्सेज ऐसे बहुत ही रोमानी अंदाज में बताते हैं, याकूब के उस गहरे प्यार की वजह से वो 7 साल उसे महज कुछ दिनों जैसे ही लगे।
सुनने में तो ये बहुत ही रोमांटिक लगता है, लेकिन ये रोमानियत बहुत जल्दी एक बहुत ही भयानक धोखे में बदलने वाली थी।
लाबान, जो बहुत ही चालाक इंसान था, वो याकूब की इस कमजोरी को बहुत अच्छे से भांप गया था।
और फिर वो शादी की रात आती है, एक बहुत बड़ी दावत होती है, लेकिन जब अगली सुबह सूरज उगता है तो याकूब को पता चलता है कि उसके बगल में राहेल नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन लिया है।
ये सच में एक बहुत बड़ा शौक था उसके लिए।
रुको रुको, यहाँ ना एक बात आसानी से गले नहीं उतरती। मतलब कोई इंसान 7 साल जिस लड़की का इंतजार कर रहा हो, वो अपनी ही शादी में इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकता है?
आज के हिसाब से सोचें तो हाँ, ये अजीब लगता है।
अरे, क्या उसे चेहरा नहीं दिखा, आवाज नहीं सुनाई दी? ऐसा कैसे हो सकता है?
देखिए, सोर्सेज ये साफ करते हैं कि कहानी में इसके बिल्कुल ठीक ठीक तरीके नहीं बताए गए हैं, लेकिन अगर हम उस समय की संस्कृति और हालात को समझें तो ये मुमकिन था।
वो कैसे?
शादी की दावत कई दिनों तक चलती थी, उसमें भरपूर शराब परोसी जाती थी, और फिर तंबू के अंदर रात में बहुत घना अंधेरा रहा होगा।
और शायद घूंघट का भी कोई रिवाज रहा हो।
बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है कि लिया ने भारी घूंघट कर रखा हो, जो उस समय की शादियों में काफी आम बात थी।
और लाबान ने कितनी चालाकी से इस पूरे ड्रामे का फायदा उठाया। जब याकूब भड़क उठता है तो लाबान बड़ी ही शांति से हारान की एक लोकल परंपरा का बहाना बना देता है।
हाँ, वो कहता है कि हमारे यहाँ छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं होती,
और याकूब फंस जाता है।
ये लाबान का एक बहुत ही सोचा समझा दाव था। याकूब को अब राहेल को पाने के लिए 7 साल और मजदूरी करनी पड़ती है,
मतलब कुल मिलाकर 14 साल की कड़ी मेहनत। इसे देखकर ना मेरे मन में ख्याल आता है, याकूब ने खुद अंधेरे का और बकरियों के खाल का इस्तेमाल करके अपने अंधे पिता को धोखा दिया था।
हाँ, इस हक को।
बिल्कुल, और अपने बड़े भाई का हक भी छीना था। और आज वो खुद अंधेरे का शिकार हुआ और उसे एक बड़ी बहन थमा दी गई।
एक तरह का कर्मा है ना?
वही तो, उसे लाबान के रूप में एक मास्टर मैनिपुलेटर मिल गया। इसे तो यही कहेंगे ना कि जो बोया वही काटा।
डॉक्टर मैथ्यूज भी इस बात को हाईलाइट करते हैं, धोखेबाज याकूब अब खुद बार बार धोखा खा रहा है। ये एक पोएटिक जस्टिस या कर्मों का फल ही लगता है।
लेकिन इस धोखे का असर सिर्फ याकूब तक तो नहीं रहा ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने परिवार के अंदर एक बहुत ही जहरीली खाई बना दी। लिया और राहेल जो सगी बहनें थीं, उनके बीच एक भयानक ईर्ष्या शुरू हो गई,
और ये जलन बच्चों को जन्म देने की एक अंधी रेस में बदल गई।
उस समय के समाज की ये एक बहुत कड़वी सच्चाई थी। लिया को पता है कि याकूब उससे नहीं बल्कि राहेल से प्यार करता है, लेकिन ईश्वर लिया की हालत पर दया करते हैं और उसे बच्चे होते हैं।
और दूसरी तरफ राहेल थी, जिसे याकूब का सारा प्यार तो मिल रहा था, लेकिन वो मां नहीं बन पा रही थी।
और उस प्राचीन समाज में बांझपन को एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता था। राहेल अंदर से टूट जाती है, वो ईर्ष्या में याकूब पर चिल्लाती है, मुझे बच्चे दो वरना मैं मर जाऊंगी।
जिस पर याकूब भी भड़क जाता है। वो कहता है कि क्या मैं ईश्वर की जगह हूँ? मतलब कम से कम वो अपनी लिमिट्स जानता था।
हाँ, इतनी कला के बीच भी याकूब का ये जवाब दिखाता है कि उसे पता था जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है।
लेकिन ये ज्ञान सिर्फ बातों तक ही सीमित था, क्योंकि इसके तुरंत बाद दोनों बहनें अपनी अपनी दासियों को, बिल्हा और जिल्पा को, एक तरह से सरोगेट बनाकर इस्तेमाल करने लगती हैं।
ये अजीब सी रेस बन गई थी कि कौन याकूब को ज्यादा बच्चे देगा, और इस पूरी उथल पुथल के बीच कुल 12 बेटे और एक बेटी दीना का जन्म होता है।
और सबसे बड़ा विरोधाभास यही है ना कि यही 12 बेटे आगे चलकर इसराइल के 12 गोत्र बनते हैं।
बिल्कुल, एक इतने बिखरे हुए परिवार से एक पूरे राष्ट्र की नींव पड़ रही थी। और आखिरकार राहेल भी एक बेटे को जन्म देती है, यूसुफ, जिसका अर्थ ही है वृद्धि या जुड़ना।
यूसुफ का जन्म कहानी को एक नया मोड़ देता है। लेकिन बच्चे पैदा करने की इस होड़ में ना उस समय के कुछ अजीबोगरीब अंधविश्वास भी सामने आते हैं। हमारे सोर्सेज में मैंड्रेक का जिक्र है।
हाँ, मैंड्रेक उस समय की लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा था।
तो ये मैंड्रेक का क्या चक्कर था, मतलब ये कोई फल था ना?
हाँ, ये एक पीला लाल रंग का फल होता था और इसकी जो जड़ें होती थी ना वो बिल्कुल किसी इंसान के धड़ या निचले हिस्से जैसी दिखती थी।
अच्छा,
तो राहेल और लिया इन मैंड्रेक के लिए आपस में सौदा करती हैं क्योंकि इसे एक बहुत शक्तिशाली काम उत्तेजक और फर्टिलिटी बढ़ाने वाला माना जाता था।
मतलब पूरी तरह से एक अंधविश्वास।
बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक फोकलोर या लोक मान्यता थी।
और सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, ये टोटके प्रॉपर्टी बढ़ाने के मामलों में भी इस्तेमाल हुए। जब याकूब 14 साल बाद घर वापस जाने की सोचता है तो लाबान उसे रोकना चाहता है,
क्योंकि लाबान जानता था कि याकूब के कारण ही उसका भी फायदा हो रहा है।
हाँ, तब याकूब एक नया ऑफर देता है कि वो लाबान के झुंड से सिर्फ चितकबरे, धारीदार और काले जानवरों को अपनी मजदूरी के रूप में लेगा।
और लाबान फिर से अपनी पुरानी फितरत दिखाता है, वो रातों रात सारे धारीदार जानवर अलग करके अपने बेटों को दे देता है
और उनके बीच पूरे 3 दिन के सफर की दूरी बना देता है ना?
बिल्कुल, ताकि कोई क्रॉस ब्रीडिंग में हो सके और याकूब को कुछ ना मिले।
लाबान को लगा उसने फिर से याकूब को मात दे दी, लेकिन याकूब भी अब कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो क्या करता है कि पानी पीने की जगह पर कुछ पेड़ों की छाल छील कर रख देता है, सफेद और छाल के पैटर्न वाली टहनियां।
उसकी सोच ये थी कि जब जानवर पानी पीने आएंगे और संभोग करेंगे तो इन धारीदार टहनियों को देखकर वो धारीदार बच्चे ही पैदा करेंगे।
अरे, अगर हम आज के लॉजिक से देखें तो हम जानते हैं कि टहनियों को देखने से जेनेटिक्स नहीं बदलते, ये तो किसी पुराने टोटके या प्लेसिबो इफेक्ट जैसा लगता है।
एकदम सही।
तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ईश्वर ने इस टोटके को काम क्यों करने दिया? याकूब के जानवर अचानक इतने कैसे बढ़ गए? क्या ईश्वर उस अंधविश्वास को सही साबित कर रहे थे?
नहीं नहीं, डॉक्टर मैथ्यूज इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, याकूब और उसका परिवार सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते तो थे, लेकिन उनका ज्ञान अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं था।
अच्छा, वो अभी भी अपनी चालबाजियों पर ही निर्भर थे।
हाँ, ईश्वर ने उनके इस सीमित ज्ञान को स्वीकार किया, चमत्कार उन टहनियों ने नहीं किया था।
मतलब वो याकूब का कोई स्मार्ट हैक नहीं था, बल्कि ईश्वर का सीधा इंटरवेंशन था।
बिल्कुल, याकूब की जो भारी सफलता थी, उसके ऊंट गधे, वो सब टहनियों को देखने का रिजल्ट नहीं थे, वो ईश्वर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा थे। लाबान ने याकूब की मजदूरी 10 बार बदली, जो लगातार धोखा देने को दिखाता है, लेकिन ईश्वर ने उस टोटके के कारण नहीं बल्कि उस टोटके के बावजूद याकूब को समृद्ध किया।
ये बहुत ही पावरफुल बात है। लेकिन जैसे जैसे याकूब अमीर हुआ, लाबान के बेटों में बहुत ईर्ष्या पैदा होने लगी। माहौल इतना बिगड़ गया कि ईश्वर ने याकूब को वहां से निकलने का इशारा दे दिया।
और ये कोई नॉर्मल विदाई नहीं थी, ये एक महापलायन था।
हाँ, याकूब अपनी पत्नियों को मैदान में बुलाकर सब समझाता है और वो दोनों तुरंत भागने को तैयार हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उनके पिता ने उनके साथ विदेशियों जैसा बर्ताव किया है
और विरासत का पैसा भी खा गया है।
ये पूरा सीन मुझे किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है। याकूब मौका देखकर बिना बताए फुरात नदी पार करके गिलाद के पहाड़ी इलाके की तरफ भाग निकलता है।
लेकिन इस भागम भाग में एक बहुत अजीब चीज होती है। राहेल अपने पिता के घर की देवताओं की मूर्तियां, जिन्हें टेराफिम कहते थे,
वो चुरा लेती है।
हाँ, ये ऐसा मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब अगर वो लोग यहोवा को मानते थे तो मूर्तियां क्यों चुराई? क्या ये किसी कॉरपोरेट जासूसी जैसा था कि कंपनी छोड़ने से पहले बॉस का गुप्त डेटा चुरा लो ताकि बाद में ब्लैकमेल कर सको?
अरे वाह, आपका ये गुप्त डेटा वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। उस प्राचीन संस्कृति में इन पारिवारिक मूर्तियों का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं जुड़ा था।
तो फिर क्या मतलब था?
इन मूर्तियों का कब्जा होना एक तरह का कानूनी दस्तावेज या विरासत के अधिकार का प्रूफ माना जाता था। राहेल शायद ये साबित करना चाहती थी कि आगे चलकर वही लाबान की संपत्ति के असली वारिस हैं। ओह, मतलब ये उनके लिए धर्म से ज्यादा एक लीगल इंश्योरेंस पॉलिसी थी। ये तो एकदम नया नजरिया है। खैर, जब लाबान को 3 दिन बाद पता चलता है तो वो 7 दिन तक पीछा करके उन्हें गिलाद के पहाड़ों में पकड़ लेता है।
और वो याकूब पर मूर्तियां चुराने का इल्जाम लगाता है। याकूब को तो राहेल की चोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो लाबान को पूरे तंबू की तलाशी लेने की छूट दे देता है।
और यहीं राहेल अपनी सबसे बड़ी चालाकी दिखाती है। वो मूर्तियों को ऊंट की काठी में छिपाकर उसी पर बैठ जाती है और बहाना क्या बनाती है कि वो मासिक धर्म से है, इसलिए सम्मान में खड़ी नहीं हो सकती।
और लाबान उस काठी की तलाशी नहीं लेता, खाली हाथ लौटना पड़ता है उसे।
इसके बाद याकूब का जो गुस्सा फूटता है ना, वो बस सुनने लायक है। 20 साल की पूरी भड़ास निकलती है उसकी। वो लाबान को याद दिलाता है कि कैसे उसने सर्द रातों में ठिठुरते वो भेड़ों की रक्षा की, खून पसीने की तरह उसे निचोड़ा गया
था, फिर भी उसने याकूब को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया।
क्यों?
क्योंकि एक रात पहले ही ईश्वर ने लाबान को सपने में चेतावनी दे दी थी कि वो याकूब को कुछ ना करे। ईश्वर खुद अपनी योजना की रक्षा कर रहे थे।
और अंत में दोनों के बीच एक शांति समझौता होता है। वो एक पत्थर का खंबा और पत्थरों का ढेर बनाते हैं। लाबान शपथ लेता है, लेकिन याकूब एक अजीब फ्रेज यूज करता है। वो अपने पिता इसहाक के भय की शपथ लेता है।
हाँ, फियर ऑफ आइजैक।
इसका क्या मतलब है?
हाँ।
क्या ईश्वर पर विश्वास का मतलब सिर्फ खौफ में जीना है?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मैथ्यूज इसे समझाते हैं कि ये बात कहने का एक तरीका है, कॉज की जगह इफेक्ट का इस्तेमाल।
थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे?
देखिए, ईश्वर कारण है और उनका प्रभाव है डर, लेकिन ये डर कोई कांपने वाला डर नहीं है। ये एक गहरा विस्मय या परम सम्मान है, जिसे हम ऑ कहते हैं। जब आप सर्वशक्तिमान की महानता देखते हैं, तो जो सम्मानजनक भय पैदा होता है, यहाँ उसी की बात हो रही है।
अच्छा, अब समझ आया। इस समझौते के बाद अगली सुबह लाबान वापस लौट जाता है।
अगर हम इस पूरे वृतांत को देखें, तो हमें जीवन में संघर्ष की अहमियत समझ आती है। जैसे नए नियम में कहा गया है, शोक संतप्त फिर भी आनंदित।
अगर सिर्फ इन 20 सालों को देखें तो लगता है कि ये सिर्फ दुख और धोखे की कहानी है। लगता है जैसे ईश्वर कहीं थे ही नहीं।
यही तो सस्पेंस है। जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, तो समझ आता है कि ये संघर्ष उस चरित्र को गढ़ने के लिए जरूरी था। बिना उस पीड़ा और शोषण के याकूब कभी वो इंसान नहीं बन पाता जो ईश्वरीय वादे को आगे बढ़ा सके।
तो आज की हमारी इस चर्चा ने हमें एक बहुत रियल बात सिखाई है। इतिहास के हीरोज एकदम परफेक्ट नहीं होते। वो हमारी तरह ही कमजोरियों से भरे होते हैं। धोखेबाज याकूब, ईर्ष्या से भरी पत्नियां और चालाक लाबान कोई भी आइडियल नहीं था।
लेकिन ईश्वर ने इन सभी कमियों के बीच काम करते हुए अपना वादा निभाया। इंसानी कमियां किसी बड़े मकसद को रोक नहीं सकती।
बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। रेहिल ने अपने पिता का घर तो छोड़ दिया, वो एक नए सफर पर निकल पड़ी।
हाँ।
लेकिन जाते जाते उसने उन पुरानी मूर्तियों को अपनी काठी में छिपा लिया। तो हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी जिंदगी के किसी नए और बेहतर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसी कौन सी पुरानी आदतें या अतीत का बोझ है हमारे अपने पारिवारिक देवता, जिन्हें हम चुपचाप अपने साथ पैक कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है।
ये वाकई बहुत गहरा सवाल है, पुरानी और नई जिंदगी के बीच का संघर्ष।
इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और कुछ नया सोचते रहिए।